लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। 18 अगस्त को टाटा ऊर्जा शोध संस्थान टैरी के 19वें दरबारी सेठ स्मारक व्याख्यान के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भारत समेत सभी देशों को प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करके स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुदृढ़ सौर ऊर्जा में निवेश करने पर जोर दिया। जीवाश्म ईंधन प्रदूषण और कोयले से होने वाला उत्सर्जन मानव स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा तंत्र की लागत बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत जलवायु परिवर्तन से संघर्ष में सच्चे अर्थों में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है, बशर्ते वह जीवाश्म ईंधन की जगह सौर ऊर्जा को अपनाने की गति तेज करे। महामारी से उबरने के दौर में सौर ऊर्जा, स्वच्छ परिवर्तन और ऊर्जा की कुशलता से उपयोग में निवेश करने से दुनिया भर में 27 करोड़ लोगों को बिजली सुलभ कराई जा सकती है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा है कि भारत समेत सभी देशों को प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करके स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुदृढ़ सौर ऊर्जा में निवेश करना होगा। महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अपने भाषण में कहा कि आज जब हम कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के दोहरे संकट से जूझ रहे हैं, तब इस प्रयास के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण क्षण नहीं हो सकता। महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा,
Investments in renewable energy, clean transport and energy efficiency during the recovery from the pandemic could extend electricity access to 270 million people worldwide, fully a third of the people that currently lack it.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि महामारी से उबरने के दौर में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा के कुशलता से उपयोग में निवेश करने से दुनिया भर में 27 करोड़ लोगों को बिजली सुलभ कराई जा सकती है। ये संख्या इस समय बिजली की सुविधा से वंचित विश्व की कुल आबादी की एक तिहाई है। यही निवेश अगले 3 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 90 लाख रोजगार प्रदान करने में मदद कर सकता है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के शब्द। उन्होंने विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की भूमिका पर कहा कि भारत के पास देश और विदेश को नेतृत्व प्रदान करने की सभी क्षमताएं मौजूद हैं, जिसकी परिकल्पना दरबारी सेठ ने की थी। इस दिशा में गरीबी उन्मूलन और सबके लिए ऊर्जा सुलभता मुख्य संचालक हैं और ये दोनों ही भारत की प्रधान प्राथमिकताएं हैं। स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग बढ़ाना ही इन दोनों समस्याओं का समाधान है।
भारत में महामारी के कारण मार्च से तालाबंदी के दौरान बिहार राज्य के महादलित मुसहर समुदायों में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अब तक 25 बाल विवाह रोके हैं। यूनिसेफ के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तरफ से समय पर सूचना मिलने से ये बाल विवाह रोके जा सके। लगभग सभी मामलों में परिवार और बाल विवाह से संभवित शिकार बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता की गई और उनके परिजनों से बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए गए, ताकि वे समय से पहले उन बच्चों की जबरन शादी न कराएं। संवेदनशीलता के कारण सभी मामलों में दंडात्मक कार्रवाई को रोक दी गई। यूएन न्यूज के अंशु शर्मा ने भारत के बिहार राज्य में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा अधिकारी गार्गी साहा के साथ इसके बारे में बातचीत की।
हाल ही में बिहार में यूनिसेफ ने कुछ बच्चियों का बाल विवाह होने से रोका, इस पूरे प्रकरण के बारे में विस्तार से बताइए।
कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाह के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें यूनिसेफ एवं उनके पार्टनर संस्था द्वारा राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने रोका है। ये जो केसेस हैं, ये कई सारे जिला जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और ज्यादातर देखने को मिला है कि मुसहरी टोला जो कि एक महादलित टोला है, वहां से इस तरह के बाल विवाह के केसेस आए हैं। महादलित समुदाय में सर्वाधिक गरीबी व अशिक्षा है। इस समुदाय में लोग ज्यादातर भूमिहीन हैं और आजीविका के लिए मजदूरी करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हुए तालाबंदी से इस समुदाय की आजीविका जाती रही है और इस असहाय स्थिति में लोगों ने अपनी बच्चियों का बाल विवाह करने का प्रयास। बिहार में अभी दोनों तरह की परेशानियां हैं, एक तो महामारी है और दूसरी तरफ अभी बाढ़ भी आया हुआ है। तो ये देखा जाता है कि इस तरह के टाइम में ये छुप करके शादियां होती है, जो शादी मतलब अदरवाइज बहुत बड़े जलसा और बहुत बड़ा प्रोग्राम के तहत लोगों को इनवाइट करके किया जाता है, वो नहीं हो करके छुप छुपा करके होती है। जब ये शादियां होने वाली थी उससे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहार में एक विकास मित्र करके एक पद है, तो कुछ भी चीजें अगर होती है तो उन लोगों को कई बार पहले से पता चल जाता है। साथ ही में चाइल्ड हेल्पलाइन भी है, वहां पे हमारे कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ग्रुप्स भी हैं इन विकास मित्र दीदी भैया के अलावा। तो इन लोगों के कान तक जब ये बात कम्युनिटी की पहुंची तो इन्होंने डायरेक्टली फिर एसडीओ को कांटेक्ट किया, चाइल्डलाइन को कांटेक्ट किया और इन लोगों ने साथ में मिलकर के एज ए टीम ये लोग गए जाकर के उनको समझाया कि इनकी ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। और उनको ये भी समझाया कि अभी बच्ची का शादी नहीं करके अगर आप 18 के बाद या 20-21 के बाद करते हैं तो उसकी जो भी पढ़ाई भी पूरी हो सकती है और साथ ही उसको जो भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम का जो भी एडवांटेजेस वो भी उसको इजीली मिल सकता है। ये करने के बाद भी उन परिवारों से बॉन्ड साइन करवाया गया, क्योंकि कई बार देखा गया है इससे पहले भी कि सामने कई परिवार मना कर देते हैं कि ठीक है अभी हम नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे कि जिला प्रशासन के लोग चले गए या फिर हमारे वॉलंटियर्स या युवा वॉलंटियर्स या विकास मित्र लोग चले गए तो पीछे से वो लोग दूसरे गांव में कहीं और ले जा करके बच्ची का शादी कर देते थे। तो इस वजह से उनसे उन परिवार से पंचायत के सामने एक बॉन्ड भी साइन कराया गया। एक शादी में एक टीचर को भी पता चला, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के टीचर्स भी बहुत क्लोज होते हैं बच्चों से, कि टीचर्स के साथ भी हम लोग एज यूनिसेफ बहुत क्लोजली काम करते हैं, उनकी क्षमता वर्धन भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लगातार चलती है। तो उन्होंने फिर जिला प्रशासन को और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उन लोगों को बताई और वो लोग फिर एज अ टीम जा करके और सिमिलर प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हुआ जहाँ पे फैमिली को समझाया गया और भी कम्युनिटीज में लोगों के सामने।
आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा अधिकारी गार्गी साहा के साथ संक्षिप्त बातचीत।
श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक पूरे विश्व में 2,64,75,000 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है और अब तक 8,73,290 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के हिसाब से प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत में अब तक 39,36,747 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और 68,570 लोगों की मौत हुई है। भारत में शहरों से लाखों मजदूर कार्यकर्ता अपने गांव वापस लौट गए। वर्तमान में बारिश, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन पर अभी भी शोध जारी है, ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य डॉक्टरों की सलाह यानी मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइजर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इस तरह आप खुद को बचाव करते हुए दूसरों को भी बचा सकते हैं। आप सुन रहे थे वाटिकन रेडियो से लोकोपकारी चर्चा। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। चेर्नोबियो में 4 और 5 सितंबर को जारी यूरोपियन हाउस अमरोसेत्ती फोरम के सम्मेलन में शुक्रवार को अपना संदेश प्रेषित कर संत पापा फ्रांसिस ने आर्थिक गतिविधियों में किसी को भी अलग न छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश अथवा समुदाय की आर्थिक प्रक्रियाओं में सभी को शामिल किया जाना चाहिए तथा सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। यूरोपियन हाउस अमरोसेत्ती 1965 में स्थापित एक पेशेवर समूह है जिसने इटली, यूरोप और दुनिया भर में रणनीतिक और परिचालन परामर्श तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर कई गतिविधियों को विकसित किया है। संत पापा ने कहा, इस वर्ष की आपकी चर्चाओं का विषय समाज, अर्थव्यवस्था और नवोन्मेष से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान चिकित्सा, आर्थिक और सामाजिक आपात से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए असाधारण प्रयासों की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, महामारी के अनुभव ने हमें सिखाया है कि हम में से कोई भी अकेला सुरक्षित नहीं है। हमने पहली बार अपनी मानवीय स्थिति की कमजोरी को अनुभव किया है और यही हमें एक परिवार बनाती है। हम स्पष्ट रूप से यह देख सके हैं कि हमारी व्यक्तिगत पसंद हमारे पड़ोसियों तथा उन सब लोगों के जीवन को प्रभावित करती है जो दुनिया के सुदूर हिस्सों में निवास करते हैं। संत पापा ने कहा, घटनाओं के मोड़ ने हमें यह पहचानने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम एक दूसरे के हैं। उन्होंने कहा कि धन और संसाधनों के बंटवारे में एकजुटता दिखाने में असफल रहने के बाद हमने पीड़ा में एकजुटता का अनुभव करना सीखा है। संत पापा ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें विज्ञान की महत्ता का ज्ञान कराया है, तथापि इसकी सीमाओं का भी परिचय दिया है। धन और सत्ता को सर्वोपरि रखने वाले मूल्यों पर इसने सवाल उठाया है। साथ ही हमें एक साथ घर पर रहने के लिए मजबूर करके माता पिता और बच्चे, युवा और बूढ़े, इसने हमें एक बार फिर हमारे संबंधों में शामिल खुशियों और कठिनाइयों से अवगत कराया है। संत पापा ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर महामारी का गहन प्रभाव पड़ा है जिसका व्यक्तियों की ठोस जीवन स्थितियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान परिस्थिति हमें इस तथ्य पर चिंतन के लिए बाध्य करती है कि अर्थव्यवस्था को मनुष्यों की देखभाल और उत्कंठा की अभिव्यक्ति बनना चाहिए जिसमें सभी को शामिल किया जाना तथा किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसे जीवन के उत्थान और विकास का माध्यम होना चाहिए। नेदरलैंड्स में उट्रेख्ट के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल अद्रियानिस योहानिस सिमोनिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने उट्रेख्ट के वर्तमान महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल विलियम याकोब्स के नाम एक तार संदेश प्रेषित कर हार्दिक संवेदना व्यक्त की। नेदरलैंड्स के एक देखभाल सेवा केंद्र में 2 सितंबर को कार्डिनल सिमोनिस का निधन हो गया था। वे 88 वर्ष के थे। संत पापा ने लिखा, दिवंगत आत्मा को भले गरड़िये येसु की प्रेममयी दया के सुपुर्द करते हुए कार्डिनल सिमोनिस द्वारा दिए गए सुसमाचारी साक्ष्य रोटरडैम और यूट्रेक्ट की कलीसियाओं के प्रति उनकी समर्पित धर्माधीक्षीय प्रेरिताई तथा कलीसियाई सहभागिता को बढ़ाने हेतु उनके मूल्यवान प्रयासों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन में मैं आपके साथ संयुक्त हूँ। उन्होंने आगे लिखा, पुनरुत्थान की सुनिश्चित आशा में कार्डिनल सिमोनिस के निधन से दुखी समस्त शोकाकुल व्यक्तियों के लिए सांत्वना और पुनर्जीवित ख्रीस्त में शांति की मंगल याचना करते हुए मैं अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कार्डिनल सिमोनिस सन 1970 से 1983 तक रोटरडैम के तथा 1983 से 2007 तक उट्रेक्ट के महाधर्माध्यक्ष रहे थे। सन 1985 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने आपको कलीसिया के राजकुमार की पदवी देकर कार्डिनल नियुक्त किया था। कार्डिनल अद्रियानिस योहानिस सिमोनिस के निधन के साथ ही अब विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया में कार्डिनलों की कुल संख्या 220 हो गई है। इनमें 122 कार्डिनल 80 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं तथा भावी संत पापा के चुनाव में मतदान के योग्य हैं। इटली के त्रिएस्ते नगर में यूरो साइंस ओपन फोरम एसोफ का उद्घाटन करते हुए बुधवार को वैटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे अखंड मानव विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वास से प्रेरित होकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रति दूसरे वर्ष आयोजित किया जाने वाला एसोफ 2020 सम्मेलन में यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक शोधकर्ता, उद्यमी और नीति निर्माता वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में विचार विमर्श हेतु एकत्र होते हैं। अपने संबोधन में कार्डिनल पारोलिन ने विज्ञान के साथ संवाद में मानव की गरिमा और विकास को प्रोत्साहन देने हेतु कलीसिया के समर्पण को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच आदान प्रदान मानवता के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को खतरे में डालने वाले अत्यावश्यक सवालों का सामना करने के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा, मानवता यदि विज्ञान द्वारा दी गई वास्तविकता की गहनता तथा कुछ श्रेष्ठ कर के लिए गहरी मानव तड़प को अनदेखा कर देती है तो वह दूर दृष्टि के बिना लक्ष्य रहित ही रह जाएगी। म्यांमार में 8 नवंबर के लिए निर्धारित आम चुनावों की पृष्ठभूमि में देश के कैथोलिक धर्माधिपति तथा यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने अपने साथी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोगों की सेवा को प्रतिबद्ध नेताओं के पक्ष में ही अपना कीमती मत प्रदान करें। 8 नवंबर 2020 के लिए निर्धारित चुनाव 2011 में लगभग आधी सदी के बाद समाप्त सख्त सैन्य शासन के उपरांत दूसरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। इस सप्ताह जारी अपील में कार्डिनल बो ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे उसी पार्टी और उसी नेता के पक्ष में मतदान करें जो ईमानदारी के साथ शांति में योगदान दे, लोकतंत्र के माध्यम से बेजबानों की आवाज को सशक्त करें तथा संघर्षों से घिरे राष्ट्र में आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय को सुनिश्चित करें। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि मतदान एक पवित्र अधिकार और प्रत्येक नागरिक का दायित्व होने के साथ साथ लोकतंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, एक मजबूत लोकतंत्र का कुसुमित होना भ्रातृ संघर्ष से रक्त रंजित इस देश के इलाज के लिए एकमात्र आशा है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।